पूर्व पाठ में परीक्षा की चर्चा हुई थी, फिर जो है प्रमाण का क्या लक्षण है वो बताया गया था, और प्रमा के लक्षण में लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है वो बताया गया। फिर ये सवाल आया था कि प्रमा के करण को अगर प्रमाण कहते हैं तो उस करण का जो है फल आपको बताना चाहिए, क्योंकि जिस कारण का फल हो वह करण कहलाता है और जिस कारण का फल न हो वह कारण कहलाता है। तो चूंकि आपने प्रमा के करण को प्रमाण बोला है, इसीलिए आपको करण का फल आपको बताना चाहिए। करणस्य फलवत्व नियमात्, करण जो होता है ना उसमें नियमित रूप से फलवत्व होता है। फलवत्व माने युक्तता, तो फल से युक्तता होती है करण में। तो यहाँ भी आपको फल बताना चाहिए। कहा कि क्या फल है, तो कहा कि प्रमैव फलम, यहाँ जो है प्रमाण में फल क्या, प्रमाण में फल क्या है, जब प्रमाकरणम प्रमाणम, ये जो आप बताते हैं कि प्रमा का करण प्रमाण है, तो प्रमाण क्या हुआ, करण हुआ ना प्रमा का, तो उस प्रमाण रूपी जो करण है उसका फल क्या है, ताकि प्रमेव फलम, यहाँ पर फल जो है वह प्रमा ही है। तो कहा कि ये फलम क्या है, जैसे आम का फल होता है, आम का पेड़ होता है उसमें फल फलता है, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है फलम का मतलब वैसा क्या मीठा होता है, क्या तीखा होता है, क्या, कहा कि नहीं वो वाला फल नहीं है। यहाँ पर फलम का अर्थ होता है साध्यम, साध्य। तो प्रमाण जो है वह प्रमा का करण है, उसका साध्य क्या है, तो वह प्रमा है साध्य। अब थोड़ा यहाँ समझिए कि एक साध्य होता है, एक सिद्धि होती है, एक साधक होता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है तो साधक कौन है, साधक माने साधना करने वाला कौन है, तो भक्त जो है वह साधक है। अच्छा, किसके लिए साधना करता है, भगवान के लिए साधना करता है, तो जिसके लिए साधना करता है वह क्या कहलाएगा, साध्य। तो साध्य हो गया भगवान, साधक हो गया भक्त। अच्छा, सिद्धि क्या हुई, तो अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो सिद्धि हो गई। तो वहाँ पर जो है साधक, साध्य और सिद्धि, साधक हो गया भक्त, साध्य हो गया ईश्वर, और सिद्धि हो गई ईश्वर की प्राप्ति। तो यहाँ पर प्रमाकरणम प्रमाणम जो है, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, करण माने विशेष कारण, तो यथार्थ ज्ञान का जो विशेष कारण है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण में प्रमाण होने से क्या मिलता है, क्या होता है, क्यों प्रमाण की जरूरत पड़ती है, तो प्रमा के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिसके लिए किसी चीज की जरूरत हो, तो जिसके लिए होता है ना, वही जो है वहाँ पर फल कहलाता है, साध्य कहलाता है। अब जैसे मान, यहाँ उदाहरण ये स्वयं बताएंगे, तो यहाँ पर ये करण में फल निश्चित रूप से होता है। कोई पूछे ना कि करण में जो फल होता है वो फल क्या है, आम कटहल जैसा है क्या, कहा कि नहीं, करण का जो फल होता है वो साध्य रूप होता है, माने जो साध्य है उसी को नाम, उसी का नाम यहाँ पर फल है। कहा कि उदाहरण के तौर पर समझाइए, तो कहा कि यथा छिदा करणस्य परसो हो छिदा एव फलम, छिदा करणस्य, छिदा का मतलब होता है काटना क्रिया, काटते हैं ना किसी चीज से, जैसे लकड़ी वकड़ी को काटते हैं, तो छिदाकरण मतलब, छिदा का मतलब होगा काटना। अच्छा, छिदा का जो करण है, करण माने वही विशेष कारण, तो छिदा माने काटना, उसका जो करण है माने विशेष कारण है वह कौन है, तो मान लीजिए कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो छिदा का करण कौन होगा, कुल्हाड़ी होगी ना। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी के लिए परशु शब्द का प्रयोग हुआ है, परशु, जैसे गुरु का षष्ठी में गुरोह रूप बनता है ना, तो परशु जो है ह्रस्व उकारांत शब्द, उसका षष्ठी में क्या बनेगा, परशो हो, वही है। तो छिदा माने काटना, उसका करण जो है क्या है, परशु है, माने कुल्हाड़ी है। तो अब यहाँ पर अच्छा, परशु छिदा एव फलम, फिर उस परशु का जो है वह फल क्या है, तो छिदा एव, माने छिदा माने काटना, काटना ही जो है वहां पर फल है। यहाँ पर थोड़ा ये समझिए कि काटना क्रिया हो रही है और उस काटना क्रिया को कौन कर रहा है, तो परशु कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण से कोई काम हो रहा हो तो वह कारण जो है ना यहाँ पर कौन है, परशु है। अगर परशु नहीं रहता, कुल्हारी नहीं होती, तो काटना क्रिया नहीं हो पाती ना, इसलिए परशु यहाँ पर कारण है। और कार्य क्या है, छिदा है। छिदा माने काटना कार्य हो गया, उसका करण हो गया परशु, और फल क्या हुआ, तो छिदा एव फलम, काटना जो है वही वहाँ पर फल होता है। तो जैसे छिदा करण परशु जो है छिदा का फल होता है, ऐसे ही प्रमा करण का फल जो होगा वह प्रमा ही होगा, क्योंकि इन्होंने उदाहरण के द्वारा इसको समझाया। फिर से देख लीजिए कि प्रमा करणम प्रमाणम में का मतलब क्या हुआ, कि प्रमा का जो करण है वह प्रमाण कहलाता है। अब करण में कोई न कोई फल अवश्य होगा, तो यहाँ पर प्रमाण रूपी जो करण है उसका फल क्या है, ताकि प्रमा एव फलम, प्रमा ही जो है उसका फल होता है। अब फल कहते किसको हैं, तो फलम साध्यम इत्यर्थः, फल का मतलब होता है साध्य। साध्य माने जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए वह साध्य है। अब जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो क्यों जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, विद्यालय के लिए जाते हैं ना, तो विद्यालय वहाँ साध्य हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण बताया, यथा छिदा करणस्य परशोः छिदेव फलम। अब परशु जो है वह क्या है, छिदा का करण है, तो उसका परशु जो है करण उसका फल क्या होगा, छिदा होगा। ऐसे ही प्रमाण क्या है, प्रमा का करण है, तो प्रमाण का फल क्या होगा, प्रमा होगा। बिल्कुल सेम है, मिला लीजिए, देखिए दो लाइन नहीं हो तो लिख लीजिए, एक लिखिए प्रमा करणम प्रमाणम, उसके नीचे लिखिए छिदा करणम पर छिदा करण परशु, ऊपर लाइन में लिखा आपने प्रमा करणम प्रमाणम, उसके नीचे लिखिए छिदा करणम परशु। अब देखिए प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर परशु किसको कहते हैं, छिदा के करण को परशु कहते हैं, ठीक है। अब परशु करण है ना, उसका फल क्या है, तो छिदा। ऐसे ही प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमाणम जो है करण है, उसका फल क्या होगा, तो प्रमा। बिल्कुल सेम बैठ रहा है ना, प्रमा करणम प्रमाणम और छिदा करणम परशु। तो जैसे परशु करण है वैसे प्रमाण करण है, परशु का फल क्या है, तो छिदा है, तो प्रमाण का फल क्या है, प्रमा है। क्यों, जिसका करण होता है ना वो उस करण का फल होता है, तो प्रमा का करण प्रमाण है, तो प्रमा फल होगा वहाँ। ये छिदा का करण परशु है तो उसका फल जो है छिदा होगी। क्लियर हुआ ना, कि जिसका करण होता है वही करण का फल होता है। तो प्रमाण किसका करण है, प्रमा का करण है, तो प्रमाण का फल होगा प्रमा। परशु करण है, किसका करण है, छिदा का करण है, तो यहाँ पर छिदा ही जो है वह परशु रूपी करण का फल कहलाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर जो है प्रमाण का लक्षण, फिर जो है इसमें लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है वो समझा, फिर करण क्या होता है, प्रमा का फल क्या है, वह फल यहाँ पर किस अर्थ में है, तो साध्य अर्थ में है, फिर उदाहरण में भी आपने इसको सीखा। अब आगे की चर्चा करते हैं कि आप पूछते हैं यहाँ पर का पुनः प्रमा यस्याह करणम प्रमाणम। मैंने अपने हिसाब से शुरू में संक्षेप में समझा दिया था प्रमा किसको कहते हैं, तो यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। करण किसको कहते हैं, तो विशेष कारण को करण कहते हैं। तो ये तो मैंने उस समय में संक्षेप में समझाया था। अब ग्रंथकार जो केशव मिश्र है ना, वो आपको अपने तरीके से आपको ये सारी बातें सिखाएंगे जिसको मैं समझाऊंगा। तो ये जो पुस्तक है ना, ये प्रश्नोत्तर शैली में है। ये क्या होता है, किसी बात को समझाने के लिए उसमें क्वेश्चन करते हैं और फिर उसका आंसर देते हैं। इससे ये क्वेश्चन शैली वाला जो होता है ना, प्रश्नोत्तर शैली, उससे जो है ना कोई बात ज्यादा क्लियर होती है। तो एक होती है व्याख्यान शैली, तो व्याख्यान शैली में ना उतना वस्तु उतनी वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाती है, लेकिन प्रश्नोत्तर शैली में क्लियर होती है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है कि का पुनः प्रमा, कि प्रमा किसे कहते हैं, का माने किसे कहते हैं। फिर यस्या करणम प्रमाणम, जिसका की करण प्रमाण को बताया गया, पहले कहा ना प्रमा करणम प्रमाणम, वही कह रहे हैं कि प्रमा किसको कहते हैं। आपने प्रमाण का जो लक्षण किया कि प्रमा का करण प्रमाण है, तो ये प्रमा होती क्या, तो उसका उत्तर दिया उच्यते। क्या प्रमा क्या होती है, तो यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ जो अनुभव है उसको प्रमा कहते हैं। अब ये यथा अनुभव तो समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को देखा तो अनुभव हुआ, किसी चीज को सुना अनुभव हुआ, किसी चीज को सूंघा तो अनुभव हुआ। वह अगर यथार्थ है, जो है वही अगर अनुभव हो रहा है तो वह हुआ यथार्थ अनुभव। ये यथार्थ अनुभव कहने से एक बात निकलती है कि अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव जो है ना उसको प्रमा कहते हैं, और अयथार्थ अनुभव माने जो यथार्थ अनुभव नहीं है उसको अप्रमा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमा करणम प्रमाणम में जो प्रमा शब्द आया है, उस प्रमा का अर्थ क्या है, तो यथार्थानुभव है प्रमा, यथार्थ जो अनुभव है वह प्रमा है। कहा कि ये जो आपने प्रमा का लक्षण किया यथार्थानुभव प्रमा, इसमें यथार्थ लगाने की क्या जरूरत है, सीधे कह दीजिए ना अनुभव प्रमा। अब जैसे मान लीजिए कोई फूल है, लाल कोई फूल है, तो लाल फूल कहने की क्या जरूरत है, सीधे कह दीजिए फूल, क्योंकि लाल फूल जो है वो तो फूल तो है ही, तो फूल सीधे कहिए लाल क्यों लगाया गया। तो आप क्या जवाब देंगे, यही देंगे ना कि लाल इसलिए लगाया कि काला फूल सफेद फूल ये सब पकड़ में न आवे, इसका ग्रहण न हो, इसलिए लाल फूल कह दिया। लाल कमल कहने से श्वेत कमल नील कमल ये सब हट जाएगा ना, इसका ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा, इसका मतलब है कि जो अयथार्थ अनुभव है वह प्रमा के लक्षण, प्रमा के लक्षण में नहीं आएगा, वह प्रमा नहीं कहलाएगा। वही कह रहा है कि यथार्थ यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निराशा। कहा कि अगर हम सीधे कहते अनुभव प्रमा, तो जो अयथार्थ ज्ञान है उसको भी प्रमा कहना पड़ता। तो कहा कि ये अयथार्थ ज्ञान कौन होते हैं, तो इन्होंने तीन बताया, संशय विपर्यय और तर्क। इसमें ना ज्ञान जो है ना लास्ट में इसको तीनों में जोड़ जोड़ दे दीजिए, जैसे संशय ज्ञान, विपर्यय ज्ञान और तर्क ज्ञान। तो संशय ज्ञान, विपर्यय ज्ञान और तर्क ज्ञान जो है ना, ये तीनों क्या है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये है अयथार्थ ज्ञान। तो इसको प्रमाणों कहा जाए, इसीलिए अनुभव प्रमाण ही कह करके यथार्थानुभव प्रमा बोला, क्योंकि ये सब यथार्थ अनुभव नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो इनको प्रमाणों कहा जाए, इसलिए यथार्थानुभव बोला गया। फिर कहा कि ठीक है, तो फिर यथार्थ प्रमा कहिए, यथार्थ अनुभव प्रमा की क्या जरूरत है। कहा कि अनुभव इति स्मृते निराश, अनुभव कहने से स्मृति का निराश हो जाता है, निराश माने निवृत्ति। तो दो चीजें होती है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति से क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है, और निवृत्ति से क्या होता है, कोई व्यक्ति वहां से निवृत्त हो जाता है। मान लीजिए आपने घर के अंदर एंट्री ली तो वो प्रवृत्ति है, और घर से बाहर चले गए तो निवृत्ति हो गई। ऐसे ही निराश का मतलब होता है बाहर करना, ठीक है। तो यथार्थानुभव प्रमा, प्रमा किसे कहते हैं, तो यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। तो इसमें यथार्थ शब्द का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि अयथार्थ को हम प्रमा न कहें। ऐसे ही अनुभव शब्द क्यों कहा इसमें लक्षण में, तो इसलिए कहा कि स्मृति को जो है ना इस लक्षण से बाहर करने के लिए। तो अयथार्थ ज्ञान को बाहर करने के लिए यथार्थ लगाया, और स्मृति को बाहर करने के लिए लक्षण में अनुभव शब्द का प्रयोग किया गया। असल में क्या है ना कि ये स्मृति जो है ये भी ज्ञान है, और अनुभव जो है ये भी ज्ञान है, तो अगर सीधे हम यथार्थ कहते ना तो क्या होता, अनुभव भी पकड़ में आ जाता, स्मृति भी पकड़ में आ जाती। इसलिए यहाँ पर यथार्थ अनुभव बोला, ताकि स्मृति जो है वह अनुभव नहीं है तो स्मृति का ग्रहण नहीं होगा। तो इस पूरा क्लियर ये हुआ कि संशय प्रमाण नहीं है, विपर्जय प्रमाण नहीं है, तर्क प्रमाण नहीं है, और यही चीज बताने के लिए लक्षण में यथार्थ कहा गया। ठीक है, अनुभव क्यों कहा गया लक्षण में, ताकि स्मृति जो है वह प्रमाण नहीं है, इस बात को बताने के लिए यथार्थानुभव में अनुभव शब्द का प्रयोग किया गया। निराशा माने बाहर करना, पृथक करणम निराशा है, अलग करना जो है ना उसी का नाम है निराश। तो कहा कि ये स्मृति किसको कहते हैं जी, तो कहा कि ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, जो जिस विषय का ज्ञान आपको पहले से है उसका जो ज्ञान होता है उसका नाम है स्मृति। अब जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे पहले देखा, कल देखा, ठीक है, तो मेरा ज्ञान आपको पहले हो चुका है, और आज जो है ना आपको जो है उसकी जो याद आएगी हैं गुरु जी की, उसी का उस याद को ही स्मृति कहते हैं। कहते हैं ना कि याद आई, तो याद आई कौन सी बात याद आती है, जो ज्ञात विषय जो होता है ना उसी का जो ज्ञान होना है उसी को याद कहते हैं। कोई चीज़ पहले हो चुकी है, पहले आप उस समझ चुके हैं, और वह जब याद आती है तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं स्मृति। तो जिसको आप लोग याद आना कहते हैं ना, उसी को यहाँ संस्कृत में स्मृति शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, माने जो विषय ज्ञात है, माने पहले से जिस विषय को आप जानते हैं उसका जब ज्ञान होता है आज अभी, उस अभी होने वाले ज्ञान का नाम है स्मृति। मान लीजिए पहले आपने इकोनची सूत्र याद किया, उसकी वृत्ति याद किया, और आज जो है ना उसको स्मरण कर रहे हैं, तो ज्ञात विषय हो गया इकोनची और उसकी वृत्ति, और अभी स्मरण कर रहे हैं तो ये हो गया ज्ञात विषय का ज्ञान। तो अभी जो स्मृति हो रही है ना उसी को, उस अभी जो आपको वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं उसी का नाम है स्मृति। याद आने को स्मृति कहते हैं। अनुभव क्या होता है, तो अनुभव वो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, व्यतिरिक्तम माने अलग, स्मृति से अलग जो ज्ञान है ना उसका नाम अनुभव है। इसका मतलब है कि ज्ञान के दो भेद हो गए, स्मृति और अनुभव। तो जिसका पहले से ज्ञान रहता है उसका ज्ञान अगर अभी हो तो वह स्मृति है, जिसका पहले से ज्ञान नहीं है अभी ज्ञान हो रहा है तो वह अनुभव है। जैसे गुरुजी को पहले से आप जानते थे अभी वह याद आ रहे हैं तो वह स्मृति है, और गुरुजी को पहले से आप नहीं जानते थे अभी अभी गुरुजी को देख करके गुरुजी का ज्ञान हो रहा है तो वह अनुभव है। तो पहले के ज्ञान का ज्ञान होना स्मृति, और पहले से ज्ञान न हो नया ज्ञान हो उसको कहते हैं अनुभव। यही है अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। आज का पाठ यहीं रखते हैं।